एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
उठा कर गोद में स्वर्ग का मार्ग वहाँ यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन भर यूं ही चलूंगी। यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
परमेश्वर की दो पुस्तकें धर्मशास्त्र और प्रकृति। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आपका स्वागत है इस वचन सुनने के लिए। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे संग हो, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे इच्छा के अनुसार चल सके। मेरे श्रोताओं के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके संग हो, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर के दो पुस्तकें धर्मशास्त्र और प्रकृति। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं जो मिलता है भजन संहिता 33 का 4 में। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सारा काम सच्चाई से होता है। प्यारो, परमेश्वर पवित्र शास्त्र में अपने वचनों और प्रकृति में अपने कार्यों के माध्यम से पतित मानवता से संवाद करता है। पवित्र शास्त्र प्रकृति को प्रकाशित करता है और प्रकृति परमेश्वर की गवाही देती है। ईश्वर के वचन और कार्य अविभाज्य हैं। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन कर रहे एक छात्र ने एक महान योजना के संकेतों को पहचानते हुए ईश्वर की रचनात्मक प्रतिभा की प्रशंसा की। उसके प्रोफेसर ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ईश्वर को इससे बाहर रखो। हालांकि छात्र सोचता रहा परमाणु के रचयिता को अपनी सृष्टि के अध्ययन से कैसे अलग रखा जा सकता है। यह विचार कि बाइबल और प्रकृति का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है कई लोगों को अस्वीकार्य है, क्योंकि यह उनके वैज्ञानिक विचारों के सिद्धांतों को चुनौती देता है। वैज्ञानिक समुदाय में कई लोग प्रकृति और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को मानवीय विचारों के अलग अलग और परस्पर अनन्य क्षेत्र मानते हैं। विज्ञान के गहनतम विद्यार्थी भी प्रकृति में असीम शक्ति के कार्य को पहचानने के लिए विवश हैं, लेकिन मनुष्य के बिना सहायता प्राप्त तर्क के लिए प्रकृति की शिक्षा विरोधाभासी और निराशाजनक ही होगी। केवल प्रकाशन शास्त्र के प्रकाशन में ही इसे सही ढंग से पढ़ा जा सकता है। विश्वास से हम समझते हैं, कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 3 पद। प्रकृति परमेश्वर का पुस्तक है। दूसरा पत्रस 3 का 7-13 और प्रकाशित वाक्य 21 का 1-7 और 23-27 से आप सीख सकते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि पाप से प्रभावित हुई है और उसे पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ईश्वरत्व के दिव्य व्यक्तियों के बीच संवाद मानवता की रचना से पहले भी था। उदाहरण के लिए हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, कहता है उत्पत्ति 1:26 में। बाद में सृष्टि के समय परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ संवाद किया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:28 पद में, पाप के कारण यह संवाद बाधित हुआ। उत्पत्ति 3:8, हालांकि परमेश्वर ने मसीह में अपने उद्धारक अनुग्रह द्वारा स्वयं और मानवता के बीच की दूरी को पाट दिया है। ईसाई होने के नाते हम प्रकृति में ईश्वरीय प्रगटीकरण की सराहना करते हैं, रोमियो 1:20, क्योंकि हमारे मन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए बहुत अधिक सम्मान है। प्रकृति के माध्यम से हमारे परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जा सकता है वह वहां स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। हाँ, परमेश्वर ने अपने बारे में बहुत सी बातें प्रकट करने के लिए प्रकृति का उपयोग किया, लेकिन उसी प्रकृति में उसका अद्वितीय और सर्वोच्च प्रकाशन मसीह के माध्यम से आया। यह हम पाते हैं मती 1:23 पद में, रोमियो 2:14-16 में उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें मसीह और परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वे स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की दूसरी पुस्तक है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर को प्रकट करता है। यह हम पाते हैं भजन संहिता 19:7-11 और दूसरा पत्रस 1:19-21 में पढ़कर। प्रकृति से भी परमेश्वर के बारे में जो कुछ जाना जा सकता है वह इतना स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है कि यदि हम उसे अस्वीकार करते हैं तो हमारे पास कोई बहाना नहीं है, रोमियो 1:20। भजनकार के अनुसार प्रकृति में परमेश्वर की ओर से एक वचन है, भजन संहिता 19:1-6। हालांकि यह वचन परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता है। यह पूर्ण ज्ञान बाइबल में उनके प्रकाशन के माध्यम से आता है, क्योंकि उनकी व्यवस्था सिद्ध और उनकी गवाही विश्वसनीय है, कहता है भजन संहिता 19:7 पद। परमेश्वर की सृष्टि मूलतः बहुत अच्छी थी, कहता है उत्पत्ति 1:31 पद। हालांकि पाप के कारण पत्रस संसार को एक अंधकारमय स्थान कहता है, जहां पवित्र शास्त्र का प्रकाश यीशु के और भी महान प्रकाश की ओर संकेत करता है, दूसरा पत्रस 1:19-21। फिर भी पाप के बावजूद प्रकृति अभी भी अपने सृष्टिकर्ता के बारे में बात करती है। फिर भी ये प्रगटीकरण आंशिक और अपूर्ण है और अपनी पतित अवस्था में कमजोर शक्तियों और सीमित दृष्टि के साथ हम सही व्याख्या करने में असमर्थ हैं। हमें परमेश्वर द्वारा अपने लिखित वचन में दिए गए पूर्ण प्रगटीकरण की आवश्यकता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन मनुष्यों के माध्यम से आया जो पवित्र होते हुए भी सीमित थे। कहता है दूसरा पत्रस 1:19-21 में, परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से बोलकर अपने वचन को मानवता के अनुकूल बनाया। हम पाते हैं इब्रानियों 1:1 में, पवित्र शास्त्र प्रकृति के अध्ययन पर प्रकाश डालता है। हम पाते हैं यहूना 1:1-5 में और रोमियो 1:18-21 में, बाइबल का विषय यीशु है जिनके द्वारा प्रकृति की सभी वस्तुओं की रचना हुई। जब हम पवित्र शास्त्र में प्रकट उनके प्रकाश को अस्वीकार करते हैं तब अंधकार में रह जाते हैं। महान शिक्षक यीशु ने सुसमाचार के सिद्धांतों को समझाने के लिए अक्सर अपनी सृष्टि के प्रत्यक्ष शिक्षाओं का प्रयोग किया। दृष्टांत ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। बाइबल सृष्टि के बारे में जो कहती है उससे हमारे मन को प्रकाशित होना चाहिए। पृथ्वी पर अन्य सभी लोगों से बढ़कर वह व्यक्ति जिसका मन परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होता है यह महसूस करेगा कि उसे बाइबल के अध्ययन और विज्ञान के गहन अध्ययन में स्वयं को और अधिक तत्परता से लगाना चाहिए। प्रकृति पवित्र शास्त्र के अध्ययन को प्रकाशित करती है। हम पाते हैं अय्यूब 12:7-10 और भजन संहिता 19:1-6 में, हालांकि बाइबल प्रकृति पर प्रकाश डालती है लेकिन इसे प्रकृति के सभी तथ्यों की पाठ्य पुस्तक नहीं माना जाना चाहिए। बाइबल के दृष्टिकोण से प्रकृति का अध्ययन ईश्वर के ज्ञान की ओर ले जाता है। विज्ञान के अध्ययन में भी हमें सृष्टिकर्ता का ज्ञान प्राप्त करना है। सभी सच्चा विज्ञान भौतिक जगत में ईश्वर की हस्तलिपि की व्याख्या मात्र है। विज्ञान अपने शोध से ईश्वर की बुद्धि और शक्ति के केवल नए प्रमाण ही लाता है। अपने जीवन के किसी खास पल को याद करें जब आपने प्रकृति में रहकर आनंद लिया हो। हो सकता है आप समुद्र तट पर टहल रहे हो, जंगल में पैदल यात्रा कर रहे हो या किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो। आपका कैसा अनुभव रहा? क्या आप इस दुनिया के विषय ही सोच रहे थे या क्या आप परमेश्वर की ओर उसके विषय में सोच रहे थे? प्रकृति आपको परमेश्वर की ओर ले सकता है। क्यों ना आज ही प्रकृति में सृष्टिकर्ता के करीब कुछ शांत समय बिताने की योजना बनाएं, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि को बनाया है और अपने सृष्टि के द्वारा वह अपने आप को दर्शाता है। आप उसके तरफ आ सकते हैं। क्या प्रकृति और शास्त्र विरोधाभास हैं? दूसरा पत्रस 3:3-7 में पढ़कर हम इसका जवाब पा सकते हैं। प्रकृति के अवलोकन से कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर चीज की व्याख्या केवल प्राकृतिक नियमों से ही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में सभी चीजें शुरू से ही वैसे ही चलती आ रही हैं जैसे वे थी। यहां तक कि जो लोग मानते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण की रचना की है वे भी अक्सर यह मान लेते हैं कि प्राकृतिक नियम सृष्टि के समय से ही इसके इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं। हालांकि जिस वचन ने सूखी जमीन को पानी से ऊपर उठाया उसी ने पृथ्वी को जल प्रलय से ढकने दिया। यही वचन आग से इसके विनाश तक संसार को बनाए रखता है और यही वचन इसे नए सिरे से रचेगा। जब धर्म ग्रंथ और प्रकृति की हमारी व्याख्याएं एक दूसरे का खंडन करती हैं तो हमें अपने निष्कर्षों पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रकृति और धर्म ग्रंथ के बीच स्पष्ट विरोधाभास ने कई लोगों को विज्ञान और धर्मशास्त्र के बीच एक अपरिहार्य टकराव मानने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रकृति की पुस्तक और लिखित शब्द एक दूसरे से असहमत नहीं है, दोनों एक दूसरे पर प्रकाश डालते हैं। सही समझ के साथ वे हमें ईश्वर और उसके चरित्र से परिचित कराते हैं। हमें उन बुद्धिमान और कल्याणकारी नियमों के बारे में कुछ सिखाते हैं जिनके माध्यम से वह कार्य करता है। विश्वास और तर्क प्रकृति और पवित्र शास्त्र दोनों के अध्ययन के लिए प्रासंगिक हैं। रोमियो 1:16-21 प्रकृति में सत्य का दुष्ट दमन, रोमियो 1:18, 1:19-21 और 2:14-15 व्यर्थ और मुक्तापूर्ण तर्क, 1:22-23 का परिणाम है। इस मुक्ता का उपाय परमेश्वर की धार्मिकता है जो केवल विश्वास से आती है, कहता है रोमियो 1:16-17। हालांकि पौलुस का केवल विश्वास पर जोर इसकी अद्वितीय भूमिका की ओर इशारा करता है, इसका अर्थ तर्कहीन विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास तर्क को नकारता नहीं है बल्कि इसके लिए एक आधार प्रदान करता है। धर्म ग्रंथों में विलक्षणता के ऐसे अन्य उदाहरणों का वर्णन है। बाइबल स्वयं 16 स्क्रिप्चरा हमारी आस्था और व्यवहार के लिए एक विशिष्ट नियम के रूप में अपनी अनूठी भूमिका में अकेली है। हालांकि मसीह परमेश्वर का सर्वोच्च प्रगटीकरण है, ईश्वर को प्रकट करने में प्रकृति भी अपनी भूमिका निभाती है। पौलुस के लिए विश्वास पापियों की मुक्ति का प्रतिकार है और यह मसीह के प्रकाश में तर्कसंगत है। वह मानवीय समझ 1 कुरिन्थियों 14:14-19 में और दृढ़ विश्वास रोमियो 14:5 में के केंद्र को इंगित करने के लिए यूनानी शब्द नूस, जिसका अनुवाद मन है, का प्रयोग करता है। हालांकि जिस तर्क को पौलुस अस्वीकार करता है कुलुसियों 2:8 में, वह है मानव निर्मित शिक्षाओं की परंपराओं पर आधारित खोखली और भ्रामक अटकले, बौद्धिकता या बड़बोली बकवास और पुराने खोखले तर्कसंगत दर्शन। प्यारो, जैसे ईश्वरीय सत्य पवित्र शास्त्र में प्रकट होता है, वैसे ही वह दर्पण की तरह प्रकृति के चेहरे पर भी प्रतिबिंबित होता है और उसकी रचना के माध्यम से हम सृष्टिकर्ता से परिचित होते हैं। और इस प्रकार प्रकृति की पुस्तक एक महान पाठ्य पुस्तक बन जाती है। पवित्र शास्त्र के ये शब्द प्रकृति के स्वतंत्र नियमों के बारे में कुछ नहीं कहते। ईश्वर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पदार्थ और गुण प्रदान करता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है ताकि वनस्पति फल फूल सके। वह ओस, वर्षा और धूप भेजता है ताकि हरियाली उग सके और धरती पर अपना कालीन बिछा सके, ताकि झाड़ियां और फलदार वृक्ष कलियां पुष्प और फल उत्पन्न कर सके। ईश्वर की प्रत्यक्ष शक्तियों के माध्यम से ही प्रत्येक छोटा बीज धरती को चीरता है और जीवन में अंकुरित होता है। ईश्वर की शक्ति से प्रत्येक पत्ती विकसित होती है, प्रत्येक फूल खिलता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सृष्टि करता है और उसके शक्ति के द्वारा ही सृष्टि में प्रकृति में वे अपने काम करते हैं। प्यारों, पाप के बावजूद परमेश्वर ने अपने धर्म ग्रंथों और प्रकृति में अपने कार्यों के माध्यम से मानवता के साथ संवाद किया है। बाइबल हमें प्रकृति में परमेश्वर के प्रकाशन को समझने का आधार प्रदान करती है। सो चलिए हम परमेश्वर के बारे प्रकृति से जाने और साथ में उसके पवित्र शास्त्र से उसके प्रेम के बारे में जाने। आइए हम ये दोनों पुस्तकों में परमेश्वर के कार्यों, उसके प्रेम और उसके हमारे उद्धार के योजना को समझे और उसके नजदीक आए। परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करना चाहता है, इसे हम ग्रहण करें और उससे उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान पवित्र परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हमें तू ग्रहण कर। जैसे हम तेरे वचनों को सुने हैं, तू हम मानव जाति से तेरे प्रकृति के द्वारा और अपने धर्म शास्त्र के द्वारा बातें करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके उद्धार की ओर हमें आकर्षित करता है कि हम तेरे योजना को समझे, तेरे प्रेम को समझे और उद्धार प्राप्त करें। हम सबों को तो आशीष दे ताकि हम तेरे प्रेम को अपनाएं और तेरे योजना को ग्रहण करें कि हम उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन।
तू ही ईश्वर, तू ही परमेश्वर, तू ही जग का राजा, देता तू हमको जीवन अनंत, तेरा प्यार है महा। तू ही ईश्वर, तू ही परमेश्वर, तू ही जग का राजा, देता तू हमको जीवन अनंत, तेरा प्यार है महा। तू ही ईश्वर, तू ही परमेश्वर, तू ही जग का राजा, देता तू हमको जीवन अनंत, तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है महा।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@sudeventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।